जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव गुरुदेव जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 11। नाम है अध्याय के नाम है कृष्ण की बाल लीलाएं। फल विक्रेणी तस्य च्युतधन्य करद्वयं फलैः अपुरयत् रत्नैः फलभाण्डम् अपुरी च फलविक्रयणी तस्य फलविक्रयणी तस्य च्युतधान्यकरद्वयम् च्युतधान्यकरद्वयम् फलैर्पुरयद्रत्नैः फलभाण्डम् अपूरि च फलभाण्डम् अपूरि च फलविक्रीणी फल बेचने वाली आदिवासिनी तस्य कृष्ण का च्युतधान्य बदलने के लिए जो धान लाए थे वह सब गिर गया था। तो करद्वयम् अपने अंजलि से फलैहि अपुरयत् फल वाली ने उनकी छोटी सी हथेलियों को फल से भर दिया। रत्नैः रत्नों तथा सोने के बदले में फलभाण्डम् फल की टोकरी अपूरी च भर गई। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा सगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। सब लोग अनुवाद तात्पर्य बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण करें। बहुत सुंदर श्लोक हैं, आप लोग नित्य श्रवण करते हैं। अगर ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो आगे कुछ चर्चा होगी वह भी बड़ा आनंद आएगा। इसका अर्थ इस प्रकार है, जब कृष्ण तेजी से फलवाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि में भरा हुआ बहुत सा अर्न गिर गया था, और फिर भी फलवाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। और उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्न तथा सोने से भर गई। तात्पर्य, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्योपहृतम अस्मामि प्रयतात्मनः। कृष्ण इतने कृपालु है कि यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतनी ही है कि वे चीजें भक्तिपूर्वक अर्पित की जाए। और यो में भक्तिया प्रयच्छति, अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा से फूल कर कुपा हुआ रहे कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है और मैं कृष्ण को थोड़ा सा दे रहा हूं, तो कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते हैं। फल बेचने वाले ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्वक बर्ताव किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझे तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया है, फिर भी तुम जो चाहो सो ले जाओ। और इस तरह उसने कृष्ण की हथेली में उतने फल रख दिए जितने उसमें आ सकते थे। और बदले में कृष्ण ने उसकी सारी हथेलियां को रत्न तथा सोने से भी भर दिया। इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए, कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले में वह भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़कर दे सकते हैं। मूल बात तो प्रेम का विनिमय, इसलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में कृष्ण ने शिक्षा दिया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वीषि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना भी होम करते हो या दान में देते हो तथा जितनी भी तपस्या करते हो वह सब मुझे भेंट करो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु यदि कोई कृष्ण को कुछ देना चाहता है तो उसमें उसी का लाभ है। और इस संबंध में यह दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है। और इस प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से कृष्ण की सेवा करें तो बदले में कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप हम सुखी होंगे। कृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे आत्माराम हैं, अर्थात अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं अरूप कदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय च नमो नमः भक्त्या विहीनः अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकदाल्भ्यं रुक्माङ्गदार्जुनवशिष्ठविभीषणादि पुण्यानि मानुभागवता नमामि यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरार नवनीरदाभात् पीताम्बराद अरुणबिम्ब फलाधरो पुरुणेन्द्रसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहं न जाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज बड़ा पावन दिवस है, प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव भी है और प्रत्येक रविवार को खास करके जितने भी हरे कृष्ण मंदिर है सब जगह ज्यादा लोग आते हैं और क्रम के अनुसार सवेरे भागवत तो होता ही है, दोपहर के समय में बड़ा आनंद आता है संत समागम में जब बैठ करके व्यासपीठ को कहने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज क्रम के अनुसार हम लोग यहाँ तक पढ़ते पढ़ते पहुँचे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बाल लीलाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन होता है। दसम स्कंद नवे अध्याय में है और स्कंद तो बड़े संक्षेप में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर विस्तार से कृष्ण चरित्रों का भगवान के वृंदावन बिहार लीला, मथुरा गमन लीला, द्वारकापुरी में ठाकुर जी ने जितने समस्त लीलाओं को संपन्न किया, ये समस्त लीलाएं पूरी नब्बे अध्याय के अंदर वर्णन है। और यह 11वें अध्याय इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग का वर्णन होता है। भगवान के बाल चरित्र में से एक अति मनोरम प्रसंग है जो सभी माताओं को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और सभी प्रभु जी को भी यह कथा ऐसे भगवान के लीलाएं भगवान की कथाएं रसायन कथा कथा रसी ही होता है, बड़ा आनंद प्रदान करने वाली होती है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जैसे कर्ण में हरि कथा उतरता है, कर्ण के माध्यम से जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं महाराज, बड़ा शांति सगुण प्राप्त होता है। वास्तव में मनुष्य जीवन का यही सार है, भगवान के विषय में सुनना और कहना। जिसके जीवन में कथा सुनने का सौभाग्य नहीं है महाराज, उसके जीवन निरर्थक ही है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो भगवान के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को कहने सुनने का अवसर जिसको नहीं प्राप्त होता, चाहे वो कितना सुंदर हो, कितना सुंदरी क्यों न हो, कितना धनवान क्यों न हो, देखने में कितना कैसे भी क्यों न हो, परंतु उसका जीवन कैसा है, कहते कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो एक वृक्ष की तरह जी रहा है। भस्त्राः किम न स्वसन्तितः, तरवः किम न जीवन्ति, भस्त्राः किम न स्वसन्तितः। कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन, जो व्यक्ति को हरि कथा सुनने की अवसर नहीं प्राप्त होता, भगवान के संपर्क में संयोग में जो व्यक्ति नहीं आया है, जिसको यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ संत सेवा, गो सेवा, भगवान नाम के उच्चारण करना, जप करना इत्यादि, यह सौभाग्य जिसके जीवन में नहीं है संसार में, कहते तरवो हो क्यों न जीवंती, वो तो एक प्रकार से एक वृक्ष की तरह जी रहा है। तो कोई कह सकता है, अरे अरे महाराज, तुम लोग भजन भक्ति में लगे हो इसलिए हमारे खिले उड़ा रहे हो, वृक्ष तो सांसे नहीं लेता, हम सांसे भी लेते हैं। सुखदेव जी आगे को भी कहते हैं, भत्राः किम न स्वसन्त्युतः, कहते राजन, क्या लोहार की धुकनी सांसे नहीं लेती? महाराज, हमारी अंतःकरण की धड़कने जितनी तेज चलती है, इससे करोड़ों गुना अधिक लोहार की धुकनी सांसे लेता है। बढ़िया उसकी फेफड़ा चलती है महाराज। तो उन व्यक्तियों में और उस लोहार की धुकनी में अंतर क्या रह गया? आगे तो कहते नहीं भाई, वो तो चलो सांसे ले रही है, मगर हम तो खाते पीते हैं, बाल बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो लोहार के धोकने वृक्ष थोड़े ना कर पाता है। कहते किम न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशु परे, भागवतम में ही कहा गया है। कहते क्या पशु पक्षी खाते पीते नहीं है? क्या पशु पक्षी बाल बच्चे पैदा नहीं करते हैं? तो क्या अंतर रह गया उन प्राणियों में और उन पशु पक्षियों में जो हरिभजन नहीं करते हैं? तो वास्तव में मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है हरि कथा श्रवण। इसीलिए गोस्वामी जी इस मनुष्य देह का बड़ा प्रशंसा करते, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, यह सुलभ केवल इस मनुष्य देह में प्राप्त हो सकता है। एक कथा हम आपको इतना बता देते हैं, कथा सुनने से फायदा क्या होती है, हरि चर्चाओं को श्रवण करने से लाभ क्या होता है? नित्य तो आप सुन ही रहे हैं इस प्रसंग को, इस प्रसंग के ऊपर चर्चा तो करेंगे ही है, मगर यह भी सुन लीजिए, भगवान के विषय में सुनने से लाभ क्या होती है? हर एक व्यक्ति लाभ चाहता है कि नहीं, कि बेमतलब का यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं आत्म कल्याण होगा, ये होगा, वो होगा, हरि प्रसन्न होंगे, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, दुख निवृत्ति होगा, या जो भी वगैरह वगैरह है। वैसे भगवान की कथा सुनने से चार चीज प्राप्ति होती है, अनेक वस्तु प्राप्त हो जाता है, मगर चार चीज प्रमुख है, जैसे चार नियम प्रमुख है। कोई कह सकता है ये चार नियम क्यों है, और भी तो बहुत से नियम है? नहीं, आप कोई भी नियम देख लो, ये चार नियम के अंतर्गत है। जो श्री प्रभुपाद जी ने इस वैष्णव धर्म में यह नियम को लगा रखा है, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत वर्णन प्राप्त होता है चार नियम के विषय में, तो वैसे ही कथा सुनने से चार वस्तु की प्राप्ति होती है, चार चीजें प्राप्ति होती है। क्या क्या है? यत् शृणोति यस्य रतेर्वितृष्णाः सत्यं च शोध्ये त्यचिरेण पुंसाः भक्तैर्हरौ तत् पुरुषे च सक्ष्यं தத்தேவஹாரம் பதமன்யசே யத் சுணோதி யஸ்ய ரதிர் வித்ருஷ்ணா. பஹலா லாப் க்யா ஹோதி ஹை கதா சுன்னே சே, திருஷ்ணாயே கதம் ஹோ ஜாதி ஹை, பிரதம லாப் ஹை. அப் இஸ்கி வியாக்யா நஹி கரேங்கே, இஸ்கி வியாக்யா கரேங்கே தோ இஸி மே ஹி பூரி தோ சார் கண்டா அடக் ஜாயேங்கே. திருஷ்ணா ஜோ சப்சே படா பாதக ஹை ஹமாரே பக்தி மே, பகவத் பிராப்தி மே திருஷ்ணா பஹுத் படி பாதக ஹை. சன்சார் கோ பானே கி திருஷ்ணா ஜப் தக் ரஹதி ஹை மஹாராஜ், பகவான் தப் தக் நஹி பிராப்த ஹோதே ஹை. ஜப் சன்சார் சே விரக்தி ஹோ ஜாதா ஹை, சஹஜ ஸ்வரூப் பகவான் மே ஹி ஹமாரி ஆசக்தி ஹோ ஜாதி ஹை. சீதா சீதா அர்த்த ஹை, சன்சார் சே விரக்தி பகவான் சே ஆசக்தி, பகவான் சே பிரீத். சன்சார் சே ஆசக்தி பகவான் சே விரக்தி ஹி ஹை. ஐசா ஹோ ஹி நஹி சக்தா கி சன்சார் மே பி மன் லகே, சன்சார் மே பி ஃபசே ஹுவே ஹை ஔர் பகவத் சரணாரவிந்த் கோய் பிராப்த கர் ஜாய, அசம்பவ ஹை. பகவான் பாகவத் மே க்யா கஹதே ஹை, ஹம் ஜிஸ்ஸே பிரேம் கர்தே ஹை உஸ்கே சன்சார் சுக் சப்ஸே பஹலே சீன் லேதே ஹை. மஹாராஜ், அகர் ஹம் சன்சார் மே ஆசக்தி லகா கர்கே ரக்கேங்கே தோ பகவான் கைசே பிராப்த ஹோங்கே, நஹி பிராப்த ஹோ சக்தே. தோ கதா சுன்னே சே கதா கா ஸ்வரூப் உபஹ ஹை, வஹ பிரதம ஹ்ருதய கி த்ருஷ்ணா கோ கதம் கர் தேதா ஹை. பட சுந்தர கதா ஹை இஸ்கே பிச்சே, புராண மே கிரந்த மே வர்ணன் ஆதா ஹை. ஔர் தூசரி ஃபாயதா க்யா ஹை, யத் ஸ்ருணோதி யஸ்ய ரதிர் வித்ருஷ்ணா. பகவான் கி சரணாரவிந்த் மே ரதி பிராப்த ஹோதா ஹை. தூசரா ஃபாயதா க்யா ஹை, கஹதே கி இந்திரியா பவித்ர ஹோ ஜாதி ஹை. பிரதம் ஃபாயதா ஹை த்ருஷ்ணாயே கதம் ஹோ ஜாதி ஹை, தூசரா ஃபாயதா ஹை ஹமாரி இந்திரியா பவித்ர ஹோ ஜாதி ஹை. அப் வியாக்யா இஸ்கே நஹி கர் பாயேங்கே. ஜப் தக் இந்திரியா பவித்ர நஹி ஹோ சகேகி தப் தக் பகவான் கே பஜன் கர்னா பஹுத் கடின் ஹை. பகவான் க்யா கஹதே கீதா மே, தாகூர் ஜி நே அர்ஜுன் சே க்யா கஹா, அர்ஜுன் சே தோ யஹி கஹா நா, யஸாம் த்வ அந்தகந்த பாபம் ஜனானாம் புண்ய கர்மணானாம் தே த்வந்த மோஹின நிர்முக்தா பஜந்த மாம் திருடவ்ரதாஹ. அர்ஜுன், ஹே பார்த்த, ஜப் தக் அந்தகரண கி இந்திரியா உஸ்கே ஹ்ருதய பவித்ர நஹி ஹோ ஜாதா, உஸ்கே சித் பவித்ர நஹி ஹோ ஜாதா, ஹ்ருதய மார்ஜன் நஹி ஹோ ஜாதா, தப் தக் வ திருடதா பூர்வக மேரே பக்தி நஹி கர் சக்தா. ஔர் யே பாப் ரஹதே கஹா ஹை, இந்திரியா மே ஹி ரஹதே ஹை. பகவான் கி கதா ஸ்ரவண கர்ண மாத்திரச்ச பிரவிஷ்ட கர்ண ரந்த்ரேண ஸ்வானம் பாவ சரோர்வம் துனோதி சமலம் கிருஷ்ண. ஜித்தி அந்தகரண கி மல ஹை, ஜித்தி பாப் ஹை, காமனாய ஹை, உன் சபகோ ஹரி கதா சாஃப் கர் தேதா ஹை. கதா சுரூப் பகவான் ஸ்வயம் ஹி உஸே ஜாடூ லகா கே சாஃப் கர் தேதே ஹை. யே தூஸ்ரா ஃபாயதா ஹை. தீஸ்ரா ஃபாயதா க்யா ஹை, பக்திர் ஹரோ தத் புருஷே ச சக்ஷ்யம். பக்திர் ஹரோ, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சரணோ மே, கிரிதாரி கே சரணோ மே சஹஜ பக்தி பிராப்த ஹோ ஜாதா ஹை. சத்யோ ரித்ய பருக்ஷதி அத்ரஹ க்ருதிபிஹி சுஷுபிர் தக்ஷணாத். கதா சுன்னே மாத்திர சே ஹி பகவான் கே சரணாரவிந்த் மே பக்தி கி பிராப்தி ஹோ ஜாதி. பக்திர் உத்பதே புன்ஸா சோக மோஹ பயாபஹ. கதா கா சஹஜ ஸ்வரூப் ஹை, சம்ஜோ யா நா சம்ஜோ வஹ தூஸ்ரி பாத் ஹை. கான் மே ஹரி கதா பிரவேஷ் கர் கயா, மஹாராஜ் உத்தர் கயா தோ கஹதே ஹை பக்திர் ஹரௌ, பகவத் சரணாரவிந்த் மே ஹரி கதா ப்ரீத் உத்பன் கரா தேதா ஹை, பிரேம் கரா தேதா ஹை. சௌதி ஃபாயதா க்யா ஹை, தத் புருஷே ச சக்ஷ்யம். படா மஹத்வபூர்ண ஹை ஜோ ஆஜ் கே இஸ் பிரசங்க் மே ஆயேகி, ஆயி ஹுயி ஹை. தத் புருஷே ச சக்ஷ்யம் கா அர்த்த யஹ ஹோதா ஹை, பகவான் கே பக்தோ கே சாத் ஹரிஜனோ கே சாத் ப்ரீத் ஹோ ஜானா. சௌதா ஃபாயதா ஹை, பக்தோ கே பிரதி ப்ரீத் ஹோ ஜானா. மஹாராஜ், யதி ஹமாரே ஜீவன் மே பகவான் கே பக்தோ கே பிரதி சஹானுபூதி நஹி ஹை, சன்மான் கி பாவனா நஹி ஹை, பிரேம் நஹி ஹை, तो हमारी आंखों से चाहे गिरधारी के समक्ष कितना भी आंसू बह पड़े, बिहारी के समक्ष कितना भी आंसू बह पड़े, कहते हैं यदि भक्तों के प्रति हमारी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, हमारी भक्ति निरर्थक है, ढोंग है। वह भक्ति को ढोंग माना जाएगा जिसका संतों के प्रति प्रेम नहीं है, गो माता के प्रति प्रेम नहीं है, केवल वो भगवान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, वो भक्ति नहीं है। कदापि हो नहीं सकता कि भक्तों के प्रति वैरी करो, भक्तों के प्रति सहानुभूति न हो और हरि से प्रेम हो जाए, असंभव नहीं हो सकता। सीधा सीधा अर्थ बताएं, सीधा सीधा अर्थ यह होता है संतों से प्रीत हो जाना भगवान से प्रीत हो जाना है, और क्या कहें। संतों से प्रेम हो जाना, गोमाता के प्रति प्रेम हो जाना, स्वयं भगवान से प्रेम हो गया, समझ लो सीधा अर्थ है। हो सकता है कि हरि के भजन करने से हरि का दर्शन दुर्लभ हो सके, हरि प्राप्त न होए, मगर भक्त के भजन करने से भगवान की प्राप्ति न होए, ऐसा संभव है। विष्णु पुराण में क्या कहते शिव जी पार्वती से, आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधना परम। संसार में जितने देव है, जितने ईश्वर है, इनमें से सबसे सर्वोत्तम आराधना है गिरिधारी का, यह बात अटूट सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम भगवान कृष्ण ही है, ईश्वर है परम कृष्ण, इनसे बड़ा इनसे श्रेष्ठ इस जगत में कोई नहीं है, शिव ब्रह्मा तक भी नहीं है, सवरे उनके चरण वंदना करते महाराज। परंतु उन भगवान विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है तस्मात् परतरम देवी तदियानम समर्चनम, यह भगवान शिव ने कहा। इनसे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों का अर्चन करना, उनके भक्तों का वंदन करना, भक्तों का सेवा करना। इसीलिए संतों के प्रति सदा सर्वदा स्नेह की भावना होनी चाहिए, सदा सम्मान की भावना होनी चाहिए, भक्ति इसी के ऊपर आधारित है। कथनचित यदि हमारे संतों के प्रति निरादर की भावना हो जाती है, संतों के विषय में हमारे मन में कथनचित कोई ऐसी भावना जग उठता है, कहते महाराज भगवान उसे कोसों दूर कर देते, कितना प्रेमी हो, कितना ज्ञानी हो, कितना विद्वान हो, भगवान उसे दूर कर देते, चलो हटो हमारे काम के तुम नहीं हो। भले कितना मूर्ख क्यों ना हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, किसी भी जात का, किसी भी कुल का क्यों ना हो, यदि संतों के प्रति उसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, दयनीय है, महाराज भगवान उसे गले लगाते हैं। अब यहां पे बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, फल बेचने वाली की कथा है। ये फल बेचने वाली थी कौन, इसकी पूर्व के श्लोक में आप लोगों ने सुना होगा, कल के श्लोक में हमारा आदरणीय पूज्य शिक्षा गुरु जिन्होंने हमें भक्ति में प्रथम प्रेरित किया था, हमारे वंदनीय पूज्य आदियोग प्रभु जी, कल उन्होंने यह बात कहा, सुनाया है आप लोगों को, जो नित्य क्रम से आते हैं उन लोगों ने श्रवण किया होगा। कल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार फल बेचने वाली ने भगवान के द्वार पर आई और कहली, कह रही थी, फल ले लोरी फल, फल ले लोरी फल, कृणीहि भो फलानिति श्रुत्वा सत्वरम अच्युता फलार्थी धान्यम आदाय ययौ सर्व फल प्रदः, कृणीहि भो फलानिति। कल आप लोगों ने श्रवण किया, फल बेचने वाली अपने माथे पर फल की टोकरी लेकर के क्या कह रही थी, कृणी भो, इसका हिंदी में अर्थ होता है फल ले लोरी फल, फल ले लोरी फल, यह तात्पर्य होता है। इस प्रकार फल बेचने वाले कई सारे फल अपने टोकरी में रख करके माथे पर धर के नंद महाराज के आंगन में आकर के कह रहे थे, विशेष रूप से विशिष्ट रूपेण टीकाकार कहते हैं, ब्रज तो तरासी कुछ ब्रज मंडल है महाराज, कई दिन लग जाएगा भ्रमण करने में, संपूर्ण व्रत का दर्शन। पूज्य महाराज ने बड़ा सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया है, अब जिनसे हम भागवत पढ़ते थे, बड़ा सुंदर ग्रंथ का वर्णन करते हैं, व्रत के हरेक कण कण का उसमें वर्णन है। तो व्रत में विशेष रूप में मालिनी कहां फल बेच रही थी, कहते हैं नंद महाराज के आंगन में, वहां आ गई और कहने लगी क्या, कृणीहि भो फलानीति, फल ले लोरी फल, फल ले लोरी फल। हमारे बालकृष्ण लाल के कान में श्रुत्वा बालकृष्ण लाल को सुनाई दिया। नंद महल में गोपाल जी खेल रहे थे, छोटे से नन्हे से बालक थे, लगभग 4.5 वर्ष के होंगे। इतने छोटे से बालक हैं, वह बालकृष्ण लाल गिरधारी जी नंद महल महाराज के प्रांगण में, छठा छवि का आप लोग ध्यान कीजिए कैसा दृश्य होगा, स्मरण कीजिए। ठाकुर जी नंद महाराज के प्रांगण में खेल रहे थे, उन्होंने सुना सुत्वा सत्वरम अच्युत, भगवान अच्युत श्री हरि ने श्रवण किया, क्या सुना, कोई हमारे द्वार पर हमें फल देने आई है। ठाकुर जी बड़े विस्मित हो गए, महाराज सो दुनिया में तो कर्म करना सबका अधिकार है, फल देने वाला तो मैं हूं, परंतु ये कौन है जो आज गोविंद के दरबार पर गोविंद को आज फल देने चली आई, जरा देखो तो ये करुणामयी कौन है जो आज गोविंद को मुझे फल देने के लिए चली आई, लक्ष्मीकांत को, रमाकांत को, रमापति को फल देने चली आई, कौन है वो, जरा उस दासी का दर्शन तो कराऊं। हमारे ठाकुर जी बालकृष्ण लाल नन्हे नन्हे से पैरों में चलते हुए नंद महाराज के प्रांगण से, महल से बाहर निकले, थुमक थुमक चल रहे थे। चलते चलते ठाकुर जी आए और इस दशा को, भगवान की सौंदर्य मनोहर छवि को जब मालिनी ने देखा, तो मालिनी की दशा इस श्लोक में छिपी हुई है। मालिनी की दशा क्या हुई है सुनिए, बाद में फिर आज के श्लोक सुनिएगा। मालिनी ने ठाकुर को देखा, बाल गोपाल को देखा, और हमारे बाल गोपाल लाल कैसे थे देखने में, महाराज क्या कहें भगवान के सौंदर्य के विषय में। परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी पाद जो माता के गर्भ में 12 वर्ष पर्यंत रहे, माया के भय से बाहर नहीं आना चाहते थे, जैसे उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, अवतरित हुए, तुरंत नाल कटते ही वह माता पिता के मुखारविंद का भी दर्शन नहीं किए, सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। इतने बड़े विरक्त चूड़ामणि थे, वह विरक्त चूड़ामणि जब व्यास जी के शिष्यों के द्वारा भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा था, एक श्लोक में भगवान की ऐसे सौंदर्य का वर्णन हुआ है, उस सौंदर्य को सुन करके विरक्त चूड़ामणि जैसे लोहे चुंबक के संयोग में आकर खींचे टने चले आता है, वैसे ही वह विरक्त सुखदेव पाद खींच करके चले आए, वापिस घर आ गए, बिनु बुलाए चले आए। और आचार्यों ने भगवान के सौंदर्य को वर्णन किया, भगवान देखने में कैसे लगते हैं। अब उस दशा में इतनी सौंदर्य मनोहर छवि में बालकृष्ण लाल को मालिनी ने देखी, जब ठाकुर जी बाहर आए, अब ठाकुर जी 4 वर्ष के लगभग थे, 4-4.5 वर्ष के, इसीलिए भगवान को मैया यशोदा ने कोई कौपुनी पौपुनी नहीं पहनाई थी, लंगूटी मंगूटी नहीं पहनाया था, भगवान बिल्कुल दिगंबर, छोटे से बाल कृष्ण लाल है, छोटे से लाला है, क्या जरूरत है इसकी, मैया उतार करके फेंक दी। इसका झांकी हम आपको कृष्ण करुणामृत से सुना रहे हैं। माया तपन्था पथि भीमरथ्याम दिगंबर कोपि तमाल वर्णम विनाष्टहस्ते नितंब बिंबे धृत रमाकर सतिचित्त वित्तम। मायात पंथा पथि भी मरथ्याम, बिलो मंगल ठाकुर क्या कहते हैं सुनिए, कहते हे भक्तों कभी ब्रज मत जाना, बिल्लोमंगल ठाकुर कह रहे हैं कभी वृंदावन मत जाइयो। क्यों भाई, ब्रज क्यों ना जाए, ठीक है ब्रज जाना चाहते हो जाओ, मगर माया तपन्था पथि भी मरथ्याम, रास्ता भटक करके कभी नंद महाराज के प्रांगण की ओर मत चले जाइयो। ब्रज जाओ मगर नंद महाराज की महल की ओर मत जाना, बिल्लोमंगल जी कहते हैं। बोले क्यों ना, वहां बड़ा विचित्र प्राणी रहता है, विचित्र बालक रहता है, वो देखने में कैसा है, दिगंबरह कोपि तमाल वर्णम। दिगंबर रहते महाराज, दिगंबर उसको कहते हैं जिसके तन पर एक भी वस्त्र न हो महाराज, लंगूठी कछिया भी न हो महाराज। तो बाल कृष्ण लाल बिल्कुल दिगंबर रहते हैं। मां सोचती है छोटे से लाला है, इनको क्या इसकी आवश्यकता है, उतार के फेंक दी। जाओ महाराज, नंदरण ठाकुर जी घूम रहे हैं, घुंघराले केस है, बड़े सुंदर मनोहर छवि है ठाकुर जी के, ऐसे झांकी का दर्शन कराते हैं। देखने में उनका स्वरूप कैसा है, तमाल वर्णम, दिगंबरह कोपि तमाल वर्णम, श्याम वर्ण के भगवान लाला जी हमारे, श्याम वर्ण के ठाकुर जी नंदहरण जब सामने खड़े हो जाएंगे तो ऐसा मत समझना, कहते हैं वो जिसको एक बार देख लेता है महाराज, उसका तो चित्त वृत्ति इस दुनिया में लगेगा ही नहीं। एक जगह आपने यह भी सुना होगा, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपा गणानाम यदकूल चोरम श्री राधिकाया चित्ताच्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, वृंदावन में एक चोर रहता है, वो भी प्रसिद्ध चोर है, सब जानते हैं, वो बाल गोपाल है, नंद कुमार है, नंदलाल है। महाराज गिरधारी आज गाली दे रहे होंगे, आ गया कहां से और हमें यहां बैठ के ये साबित कर रहा है। बेटा बताऊंगा मौका पाते ही, जो भी महाराज चोर तो है ही है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, मगर ऐसा वैसा चोर नहीं है, धन संपत्ति चुराने वाला चोर नहीं है, किसके कुछ और चुराने वाला चोर नहीं है, ये कपड़ा वपड़ा चोरी करने वाला चोर है। कपड़ा चुराते हैं और वस्त्र चुराते हैं, मक्खन दूध दही सजिया चुराते हैं, ऐसा चोर ब्रजे प्रसिद्ध हम महाराज, बड़ा प्रसिद्ध चोर है, इनसे बड़ा विख्यात चोर कोई और नहीं है महाराज, ऐसा चोर है। कहां तक कहा जाए, यदुकुल चोरम, यदुवंशियों का चित्त वृत्ति को भी उन्होंने चुरा लिया। ठाकुर जी ने जब ब्रज से 11 वर्ष की उम्र में मथुरा की ओर प्रस्थान किए अक्रूर जी के साथ में, उसके उपरांत ब्रजवासियां एक प्रकार से मृतक प्रायः मर चुके थे, मर गए एक प्रकार से, क्योंकि उनके चित्त को, उनके जीवन को तो कृष्ण ने चोरी करके ले गए थे, इसीलिए वो केवल ऐसे ही जीवित थी, खड़ी थी वहां की गोपियां गोपांगनाएं। कहां तक कहा जाए, श्री राधिकाया चित्तस्य चोरम। महाराज इस दुनिया में शिव ब्रह्मा किसी भी देवी देवताओं के पास, गंधर्व किन्नर चानन इत्यादि उनके किसी के पास यह शक्ति नहीं है जो हमारी प्रियाजी के चित्त को चुरा ले, श्रीजी के चित्त को कोई चुरा ले, श्रीमती राधा रानी को चित्त को कोई चुरा ले, ऐसा कोई नहीं है संसार में। परंतु हमारे ठाकुर ही एक ऐसा है जो राधा रानी को, जिसको कोई नहीं चुरा सकता है, उन्हीं के चित्त को भी, उनको भी भगवान ने चुरा के, तभी तो राधा रानी 100 वर्ष पर्यंत निधिवन में ललिता के जांग में अपना मस्तक देख करके पड़ी हुई थी, केवल प्राण इसलिए टिकी हुई थी। श्याम सुंदर आएंगे, वह यदि हमें दर्शन नहीं, हमारे दर्शन यदि उनको नहीं प्राप्त होगा तो कहीं श्याम सुंदर को कुछ न हो जाए, इस वियोग में, इस भाव में प्रिया जी का प्राण टिकी हुई थी। वस्तुतः उनके जीवन को, उनके प्राण को, चित्त को ठाकुर जी ने चुरा लिया था, बड़ा प्रसिद्ध चोर है। तो बिल्वमंगल ठाकुर क्या कहते हैं, कहते हैं वैसे ही है वह जो बाल कृष्ण लाल जो दिगंबर रहते हैं, उन्हें ऐसे मामूली मत समझना आप लोग। धृत रमाकर सतिचित्त वित्तम, वो बड़ा धृत है मगर खड़ा कैसा होता है, विनस्त हस्ते नितंब बिंबे, विनस्त हस्ते, दोनों बरद हस्त को ऐसे कमर पर रख देते। महाराज दिगंबर हो बाल कृष्ण लाल, श्याम स्वरूप हो, घुंघराले केश हो, पैर में पायल पहने हुए हो, हाथ में कंगन हो, कान पर कुंडल हो, गले पर कौस्तुमणि की माला हो, होठ भिंग फल की भांति रक्त कलर की तरह रक्त की तरह लाल हो, इतने सुंदर नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह हो, ऐसे श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल छोटे से हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, केवल आभूषण से ढके हुए है बाल कृष्ण लाल, और खड़े कैसे हो जाते हैं, कोई जब उनके आमना सामना हो जाता है तो बाल कृष्ण लाल खड़े कैसे होते हैं, कहते बिनत हस्ते नितंब बिंबे, दोनों वरद हस्तों को अपने कमर पर रख लेते हैं, बिनत पर रख लेते हैं, नितंब पर रख लेते हैं, और ऐसे खड़े हो जाते हैं उसके सामने पैरों को खोल करके। महाराज ऐसा छटा से भी ठाकुर के दर्शन हो जाए, कौन है जिसका संसार में औचित लग जाए। गोस्वामी पाद जी ने क्या कहा, रमा विलासी राम अनुरागे तजत वमन एव नर वर भागे, जिसका एक बार रमापति के चरणों में प्रीत हो जाता है, एक बार गिरिधारी के प्रति जिसका लगन लग जाता है, महाराज संसार उसे सुहाता नहीं है, संसार में उसकी चित वृत्ति जा ही नहीं सकता। अब हमारी संसार के प्रति माइक बुद्धि है, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, भाई के प्रति, पोता पोती के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, ये माइक बुद्धि इसलिए है क्योंकि हमारी भगवान से प्रीत अब तक हुआ नहीं है। भगवान से प्रीत हो जाए तो सहज ही संसार से विरक्ति हो जाएगा। और भगवान कैसे हुए, कहते हैं बिलो मंगल जी धृत रमाकर हस्ति चित्त वित्तम, बड़ा धृत है, उन्हें ऐसे मामूली मत समझना, वैसे तो खड़े हो जाते हैं मगर वो इतना साधारण नहीं है, बड़ा धृत है, कहते हैं बड़ा चंचल है। महाराज आप चंचल क्यों कह रहे हैं बाल कृष्ण लाल को, अरे महाराज इतने चंचल है, अगर तुम्हारे नजर और उनके नजर दोनों टकरा गया तब तो फिर तुम गए, तब तो तुम गए बेटा, अब तुम संसार के लायक ही नहीं रहोगे। अच्छा ऐसा है, धृत रमाकरम सतिचित्त वित्तम, वाह क्या झांकी का दर्शन करते हैं संत ठाकुर जी, यह भाव है। तो आज मालिनी ने जब फल ले लो री फल कृणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्व रमच्युत, जब अच्युत ने भगवान कृष्ण ने सुना कोई फल देने के लिए हमें आई है, वो विचार करने लगे दुनिया को फल देने वाला मैं हूँ परंतु ये कौन है जो आज गोविंद को स्वयं गोविंद के दरबार पर फल देने चली आई है, चला चलो तो उसे देखते हैं कौन है ये। बाल कृष्ण लाल नंद महल से बाहर निकलते हैं, कैसा छवि होगा आपसे विचार कीजिए, उस रत्न के महल से हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण के घुंघराले केस वाले छोटे से लाला जी जब बाहर आ जाते हैं तब उनको मालिनी देखती है, मालिनी देखते ही मालिनी का जी भर आता है। कहो तो एक भजन गा के सुना दूं जो मालिनी ने गाई थी हरिदास जी के भाव है ब्रज में, हमें खैर इतना गाना नहीं आता है, आप लोग दास को क्षमा करेंगे, जैसे कहते नाना के सामने, नाना नानी के सामने पोता अगर कुछ बोलता है तो ज्यादा उचित नहीं होता, तो आप लोगों को ज्यादा अनुभव है इस बात में, यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक बैठे हुए हैं, दास को यह नहीं है परंतु एक भाव है हमारा इसमें। मालिनी ने जब ठाकुर जी को देखा, बाल कृष्ण लाल को देखा, उनकी आंखें, उनकी दोनों आंखें नयन बाल कृष्ण लाल में ही अटक गया, ठाकुर जी में ही अटक गया, गिरिधारी में ही अटक गया। देख लो गिरिधारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, गिरिधारी को आज गिरिधारी ने ही दर्शन किया है, हमारे गिरिधारी प्रभु ने ही श्रृंगार किए हैं, कितने सुंदर है। महाराज जब भगवान के छवि में इतना सौंदर्य हो सकता है, भगवान के श्री विग्रह में इतना सौंदर्य हो सकता है, तो स्वयं बाल कृष्ण लाल कितने सौंदर्य होंगे, कितने आनंद चिराघन स्वरूप, कितने आनंदवान होंगे। ये मालिनी थी कौन, ये मालिनी कौन थी जानते हैं, ये पूर्व जन्म में निषाद राज की माँ ही थी। यह कथा सुन लीजिए, समय यदि रहेगा तो आपको हरिदास जी को भजन भी सुना देगा। मालिन पूर्व जन्म में निषाद राज की माँ थी, जब हमारे राम राजा सरकार वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वनवास जा रहे थे। पिछले 4 दिन पहले रामनवमी उत्सव गया और भगवान के राम के अनंत लीलाएं हैं। राम चरित्र तो कितना भी बड़ा कर दो चाहे कितना छोटा कर दो, परंतु प्रभु राम के विशेष रूप से बड़ा सौंदर्य चर्चा होता है। सुखदेव जी एक श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद में वर्णन करते हैं, उसमें प्राधान्य यह रखते प्रिया जी के साथ किस प्रकार राजा राम सरकार बन की ओर प्रस्थान करते हैं, वनवास की लीलाएं ये प्रमुख है प्रभु राम के चरित्रों में। तो हमारे ठाकुर जी राम राजा सरकार जब बन की ओर जा रहे थे, तब एक रात्रि वो निषाद के वहां ठहरे हुए थे श्रृंगवेदपुर में, जो भगवान के मित्र लगते थे। निषाद राज के वहां ठाकुर जी ने एक रात्रि विश्राम किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, रामनवमी के उत्सव पर आप लोगों की हवि सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा संतों के द्वारा। निषाद राज ने बहुत भारी सत्कार किया ठाकुर जी के, राम राजा के बहुत बढ़िया सेवा किए, उनकी चरण संवाहन इत्यादि किया, चरण प्रक्षालन किया। और उसके उपरांत निषाद राज ने अपने सब परिवार वालों को बुलाया कि आ जाओ राम राजा के दर्शन कर लो। निषाद के दोनों आंखें भर आ रहा था, नेत्रों से अजस्र आंसू की धारा बह रही थी भगवान के बन जाने के निर्णय सुनकर के। निषाद ने कहा, प्रभु यह श्रृंगवेदपुर का राजा आप हो, आप बन मत जाइए, चित्रकूट मत जाइए, आप कहीं और मत जाइए। भले भरत ने कैकेयी ने आपको अयोध्यापुरी से निकाल दिया, परंतु निषाद कह रहा है निषाद का राज्य आपका ही है प्रभु, आप मेरे रहते हुए आप वन नहीं जा सकते, हम आपको वन में नहीं जाने देंगे। प्रभु करुणामय कृपा निधान भक्त वत्सल दीनानाथ दिन बंधु, आप यहीं पर इस निषाद के राज्य में श्रृंगवेदपुर में 14 साल बिता करके जाइए। रघुनाथ ने क्या कहा, बोला भगत राज यद्यपि हम तुम्हारे बातों को आदर करते हैं, परंतु माँ ने हमें कहा है किसी नगर में नहीं प्रवेश करना है, हमारे लिए ऐसी वरदान है तपस्वी वेश विशेष उदासी, तपस्वी की वेश धारण करके और उदासीन जीवन व्यतीत करना है। महाराज यहाँ पे तपस्वी के लिए बड़ा शिक्षा प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम ने स्वीकार नहीं किया श्रृंगवेदपुर, कौन उन्हें मना कर रहा था, चाहे तो श्रृंगवेदपुर में रह सकते थे, मगर भगवान एक भक्त का चरित्र निभा रहे थे, तपस्वी का कर्तव्य दिखा रहे थे कि हम तपस्वी है, ब्रह्मचारी एक प्रकार से गृह त्याग करके चले आए हैं, इसीलिए हमें किसी नगर में नहीं जाना है और सुख सुविधा का भी उपभोग नहीं करना है। साधु जीवन कैसे होना चाहिए, कभी घना घना तो कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। महाराज कभी बहुत कुछ प्राप्त हो गया, राधे तुम्हारी कृपा, गिरधारी आपकी आशीर्वाद, कभी सुखे रोटी प्राप्त हो गया, मुट्ठी चना घर प्राप्त हो गया, तो कोई बात नहीं प्रभु ये भी आपकी दया, कभी वो भी मना महाराज तो भी ठाकुर जी तुम्हारी जय हो। हाहाकार नहीं करनी चाहिए। भगवान ने विरक्ति का भावनाओं को व्यक्त किया, श्रृंगवेदपुर में एक रात्रि निवास किए और निषाद ने उनका खूब बढ़िया से चरण संवाहन इत्यादि किए। उसके उपरांत ठाकुर जी ने निषाद से कहा, भैया आपके इन परिवारों वालों से हमें पहचान करवाओ, कौन क्या लगते हैं आपके। और निषाद राज ने परिचय करवाया अपने परिवार वालों का, तो निषाद राज ने देखिए शिक्षा लीजिए, निषाद राज ने सबसे पहला परिचय अपने माँ के दिया, बोला कि प्रभु यह मेरा जननी है, आजकल के पुरुष होंगे यह मेरा वाइफ है, यह मेरा छोरा है, छोरी है महाराज ना। परिचय सबसे पहले बड़ों के समक्ष जब देना होता है, गुरुजनों के समक्ष संतों के सामिप्य में जब हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है अपने परिजनों का परिचय देना होता है, तो सर्वप्रथम सबसे जो वयोवृद्ध होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हीं का परिचय देना आवश्यक है, नितांत यही है। तो निषाद ने कहा कि प्रभु ये हमारे माँ है, जैसे रघुनाथ ने सुना ये निषाद के माँ है, उस भगतराज के माँ है, झट से हमारे राजा राम सरकार ने उठ करके दौड़ पड़े और दोनों बरदहस्त को बढ़ा करके निषाद की माँ के दोनों चरणों को स्पर्श करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ये राजा राम सरकार के स्वभाव है। राम ने अपने मस्तक पर उनके चरणधुली को लेप लिया और उस समय निषाद की माँ की काफी उम्र थी, बहुत वृद्ध हो चुकी थी, परंतु वाल्मीकि जी ऐसा वर्णन करते हैं, उनके शुष्क पयोधर में दूध टपकने लगा। वो सोचने लगी, यदि ये राम मेरे लाला होते मैं उसे चुम्बन करती, मैं उसे दूध पिलाती, प्यार करती, लाड करती। करुणामय कृपा निदान भक्त वत्सल, जो सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में ईश्वर है, सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, प्रभु ने उस भक्त के अंतःकरण की बात को समझ गए। महाराज, इस दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भक्त के हृदय में कोई कामना हो, कोई भक्त के हृदय में कोई बात चल रहा हो और हमारे गिरधारी को न पता हो। कहते हैं, जन्म देने वाला जननी को सबसे अच्छा पता होती है कि हमारे बच्चे को किस वक्त क्या चाहिए, परंतु हो सकता है, कथनचित ऐसा भी हो सकता है, बच्चे का पेट दर्द के कारण बच्चा रो रहा हो और माँ सोच रही है उसे दूध चाहिए, दूध पिलाने लगती है और उसकी पेट दर्द बढ़ जाती है, कभी कभार वो भी बौखला जाती है, समझ नहीं पाती है। जन्म देने वाला जननी कथनचित ऐसा हो सकता है बच्चे के हृदय के भाव को न समझ सके, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भक्त के हृदय में क्या चल रही है, किस भक्त को किस वक्त क्या चाहिए और हमारे गिरिधारी को न पता हो। ठाकुर जी को सर्व समक्ष सभी समय हर वक्त हर पल में यह पता होता है मेरे भगत को किस वक्त क्या चाहिए। महाराज, भक्त भजन करने लगता है तो भगवान छतरी बन करके उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, छाया प्रदान करते हैं, परंतु भजन तो होना चाहिए ना। जब उस निषाद की माँ के अंतःकरण में यह भाव उठा तो हमारे राजा राम सरकार ने कहा कि देवी, इस जन्म में तो यह सौभाग्य तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, परंतु अगले जन्म में हम कृष्ण के रूप में आएगा, नंदलाल के रूप में हमारी प्राकट्य होगा नंद भवन में और उस समय यह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो मालिनी ये निषाद के ही माँ थी, तो आज मालिनी को बाल कृष्ण लाल के साक्षात दर्शन हो रहा है। जब हमारे ठाकुर जी नंद महल से आ रहे हैं, अब इस झांकी का आप लोग स्मरण कीजिए, जब उन्होंने कहा कृणी ही भो फला नीति श्रुत्वा सत्वरम अच्युत, हमारे ठाकुर जी ने जब सुना कोई हमें फल देने आई है तो ठाकुर जी तुरंत नंद महल से बाहर आते हैं और मालिनी ने भगवान को देखा, भगवान के छठा सीट पर मालिनी का जब दृष्टि चला गया, मालिनी तो महाराज चकाचुक रह गई, स्तंभित से रह गई ठाकुर जी के मनोहर इस दिगंबर स्वरूप को देख करके। अब ठाकुर जी आकर कहते हैं, देफल, छोटे से लाला कैसे कह रहे होंगे देफल। मालिनी क्या कहती है, अरे ऐसे नहीं मिलेगी फल, ऐसे नहीं मिलोगे महाराज, जाओ जाओ अन्न ले आओ, कुछ दाना ले आओ, धान ले आओ, बदले में कुछ दो। महाराज, भगवान सामने हो और ऐसा लालच हो जाए यह गलत है। भगवान के दरबार पर आकर के ऐसा लालच करना, कुछ मांगना, यह अनर्थ ही है। और महाराज, भगवान सामने हो ऐसा भाव भी, ऐसा होता भी नहीं है। भगवान सामने हो और हृदय में मांगने की लालच रह जाए, यह तो कि भाव यहां पर वर्णन हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ध्रुव जी को, भगतराज ध्रुव महाराज को जब ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुआ तो भगतराज क्या कहते हैं, ठाकुर जी ने अपने दिव्य उस शंख को ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श किया, कहा कि भक्त मांगो, क्या चाहिए, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, मांगो। ध्रुव जी ने क्या कहा, प्रभु बड़ा स्थान की अभिलाषा लेकर के आपके पास आया था दास, स्थान अभिलाषी तपस स्थित हो हम, परंतु सरकार अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज, ऐसे कैसे हो गया, इतने बड़े राज्य का अभिलाषा लेके आए थे, अब हम तुम्हें प्रकट भी तुम्हारे सामने हो गया हूँ, तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, देने के लिए आया हूँ, मैं कह भी रहा हूँ भक्त मांगो। मैंने तो सुना था नारद जी से, तुमने अपने महाराज उतानपाद पिता उतानपाद उसने विश्व के सम्राट थे, उनसे बढ़ करके 10,000 गुना बड़ा राज्य चाहिए, ऐसा कामना रख के आए थे। बोले कि सरकार,
आपकी यह जो विचार है यह सत्य है, ऐसा कामना हमारे हृदय में अवश्य था, परंतु त्वं प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यं काचन विचिन्वन् पिदिव्य रत्नम् स्वामिन् कृतार्थो अस्मि वरं नयाचे। हे प्रभु, त्वं प्राप्तवान देव, हे सरकार, आप हमें प्राप्त हो गए तो आप तो हमें अमूल्य हीरे ही प्राप्त हो गए। यहाँ सभी हीरे व्यापारी है प्राय, आप हमें हीरे प्राप्त हो गए तो कांच की टुकड़ा अब हम लेके क्या करेंगे? पागलपन माना जाएगा यदि हम कांच की टुकड़ा ले जाए। महाराज, पूरे विश्व ब्रह्मांड से 10,000 गुना बढ़कर के साम्राज्य का लालच को ध्रुव जी आज भगवान की प्राप्ति होने पर कहते हैं वो कांच की टुकड़ा है, और प्रभु आप हमें अमूल्य रत्न प्राप्त हो गए हो, इसलिए स्वामिन कृतार्थ अस्मि, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ, वरम न याचे। तो भगवान की दर्शन प्राप्त हो जाए, गिरधारी लाल स्वयं सामने हो और यह भाव रह जाए कि हमें कुछ चाहिए संसार के प्रति विषय रह जाए, यह असंभव है। परंतु यहाँ पे मालिन्य कही, यह भाव आचार्यों की है। मालिन्य बोली, जाओ जाओ कुछ ले आओ, ये लीला है, आप लीला को अनायास मत लीजिए। बालकृष्ण लाल की लीलाओं में कुछ भी हो सकता है, महाराज इन लीलाओं में तो आज पूरा दुनिया भ्रम में पड़ा हुआ है। वो कैसा भगवान है जो वस्त्र चुराया, वो कैसा भगवान है जो दूसरे के स्त्रियों के साथ रमन किया, विहार किया, वो कैसे ईश्वर हो सकता है? भगवान की लीला अति विचित्र है, भगवान की लीला अति पवित्र है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आप लोग सब बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हो, आप लोग नित्य भागवत का सेवन करते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, आपको अनुभव है इसकी। परंतु ठाकुर जी से मालिन ने कहा, लाला कछु धानवान ले आओ, कुछ धान ले आओ। तो हमारे लाला ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ धान लेने। तो लाला जी मुड़ करके अब नंद महल की ओर जाने लगे। महाराज मालिन के तो गला सूखने लगा, नेत्र भर आए, मैं कितनी कठोर हृदय वाली, महाराज हमारे बाल कृष्ण लाल और पल भर यहाँ खड़े होते, मैं इनके दर्शन कर लेती, परंतु मैं कितना निष्ठुर हूँ, लालाजी आए और मैंने उन्हें वापिस भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है लालाजी अंदर जाए और मैया यशोदा उन्हें पकड़ के बिठा ले, छोटे से बाल कृष्ण लाल अब आए ना, हमें इस दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा? ऐसे विचार करने लगी तो हमारे बाल कृष्ण लाल मुड़ करके खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर कहते, देखना मैं धान लेकर के आ रहा हूं, चली मत जाना। मालिन ने यह जैसे सोची कि कहीं ये अंदर चले गए, मैया ने पकड़ के बिठा लिया और आए ना, तो हमें ये दर्शन के सौभाग्य और प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे जैसे विचार किए, बालकृष्ण लाल मुड़ के खड़े हो जाते हैं, कहने लगा, देखना चली मत जाना, मैं अभी आया। मालिन ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, धान ले आओ। फिर ठाकुर जी अंदर जाने लगे। फिर मालिन सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है छोटे से बाल गोपाल है, खेल कूद में इनकी मन है, अंदर जाते ही इनकी चित्त वृत्ति भ्रमित हो जाए, इनकी मन विचलित हो जाए और ये भूल जाए हम यहाँ द्वार पर बैठी हुई है और वो खेल कूद में लग जाए, आए ना महाराज इनके दर्शन न प्राप्त हो। ऐसे जैसे सोचने लगे, ठाकुर जी फिर से मुड़ के खड़े हो गए। ए भल वाली, चली मत जाइयो, है जाने कि मैं धान लेकर के आऊं और तुम टोकरी धर के माथे पर चल दो महाराज, तो बड़ा फल मुझे प्राप्त होगा। फिर चली मत जाना, सच कह रहा हूं, मैं अभी धान लेके आ रहा हूं, चली मत जाना। महाराज मालिन के हृदय भर आ रहा था, जिसके साथ गोविंद से स्वयं आज बात कर रहे होंगे, तो बताइए क्या सौभाग्य होगा उस देवी का, क्या आनंदमय लीला होंगी। यहाँ पे सुखदेव जी उस लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं आज के इन श्लोकों में। तो बाल कृष्ण लाल धान लेकर के आते हैं, और जब धान लेकर के आते हैं तो कैसे सुखदेव जी कैसा वर्णन करते हैं, कहते हैं आज के इन श्लोकों में, फल विक्रीणी तस्य चित धान्य कर द्वयम् फले पुरयद रत्नैहि फल भाण्डम् अपूरिता। जब ठाकुर जी हाथ में छोटे से नन्हे नन्हे से हाथ से बाल गोपाल के, तो उन हाथों में करंजली में भगवान ने कुछ धान लिया, मैया से मांगने की आवश्यकता नहीं थी। देहात में लोगों की धान गेहूं घर के पीछे एक ऐसा बड़ा सा बांस के पात का होता है जिसको हम लोग उड़िया भाषा में डोली कहते हैं, हिंदी में क्या कहते दास को यह नहीं पता है, जिसमें लोग अपने अनाज को गेहूं को भर करके रख देते हैं अगले साल के लिए, तो उसमें मांगना नहीं पड़ता। तो बाल कृष्णलाल स्वयं गए कुछ धान उससे भर करके ले आए, और जब लेके आ रहे थे तो फलवाली के पास जब आए, चित्त ध्यानम करत वयम, मालिनी क्या देखती है, भगवान के दोनों करकमल से बरहस्त से वो जो धान थी, थोड़े से ही तो धान था ठाकुर जी के हाथ में, बालकृष्णलाल के हाथ में कितनी धान रहेगी महाराज, छोटे से लाला इतनी सी हाथ हो, नन्हे से हाथ हो, नन्हे से हाथ में कितनी धान रहेगी, इतनी सी धान। मगर भगवान थुमक 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 चलते चलते जब मालिनी के समक्ष पहुंचे, तब तक हुआ क्या, ठाकुर जी के दोनों हस्त कमलों से वो धान सब शिवतः, सुखदेव जी कहते राजन वो गिर चुका था, मात्र दो तीन धान बद टिका हुआ था हाथ में। महाराज इतने दो तीन धान को ला करके बाल कृष्णलाल उसके टोकरी में रख देते, कहते दे फल। अरे महाराज अब फल वाले ने कहा, लाला ऐसे में फल तो के नहीं दूंगी, ऐसे फल मैं तुझे नहीं देने वाली। बोले अरे बड़ा दुष्ट हो तुम, ठाकुर जी कहते, बालकृष्ण लाल कहते, बड़ा दुष्ट हो, अरे तुमने कहा कि धान ले आओ, मैंने धान भी ले आया और धान देने के उपरांत कह रहे हो, हालांकि दो तीन धान ठाकुर जी ने दिया था, बदले में फल मांग रहे थे, हमें तरबूज दो पपीता दो। मालिन ने कहा तो दूंगी परंतु ऐसे नहीं दूंगी। बोले कैसे, बड़ा तुम बड़े दुष्ट हो, महाराज इस ब्रज में पूरे गोकुल में बस त्रासी कुछ ब्रजमंडल के अंतर्गत यह नंद के छोरा जहां भी जाता है, लाला जी ऐसा कहते, नंद के छोरा जहां भी जाता है, महाराज हमसे आज तक किसी ने कुछ नहीं मांगा। ब्रज की गोपियां कहती है बस लाला एक चुंबन लेने दो मौके, तुम्हें बहुत पेट भर के छचिया पिलाऊंगी, हमारी एक पपी ले लेते हैं, एक चुंबन ले लेते हैं और हम पेट भर के दूध दही मक्खन खवाते हैं। कहते लाला थोड़ा सा ठुमकी लगा करके नाथ दो, तुम्हें आज बहुत सी छचिया पिवाएंगे, और मैं थोड़ा सा ठुमकी लगा के नाच लेता हूँ तो ब्रज की गोपांगनाएं गोपिकाएं हमें पेट भर के दूध ही मक्खन खवाते पिवाते, और तुम्हें मैंने धान दिया तब परी भी कहती नहीं दूंगी फल, क्यों क्या चाहिए। मालिन के नेत्र भर आ रहे थे, मालिन ने कहा लाला मुझे बात एक बार मैया कह दे, मालिन का तो पूर्वजन में किया साथी महाराज रामावतार में। मालिन कहने लगी लाला एक बार मैया कह दे मौके, तो ठाकुर जी ने जैसे सुना तो तुरंत मैया कह करके उसके गोद में कूद पड़े। वाह धन्य है वह देवी जिसके कोख में जिसकी गोद में हमारे बाल कृष्ण लाल खेल रहे हैं, उसके हृदय में बाल कृष्ण लाल का आगमन हो गया है, धन्य है वह पुरुष वह स्त्री जिन्होंने भक्ति का स्वीकार कर लिया। बाल कृष्ण लाल उसकी गोद में उछल करके बैठ गए, कहने लगे दे फल दे फल, बार बार कहने लगे मैया दे फल, और इस प्रकार कहते हुए अपने बरदहस्त को छोटे से हाथ को मालिनी के होठ पर फेर रहे, मैया दे फल मैया दे फल। मालिनी के नेत्र भर आया, लाला तूने तो आज मुझे सब कुछ दे दिया रे, अब फल क्या, तूने तो मालिनी को ही ले लिया, आज चल लाला। तो ठाकुर जी ने उन्हें उठा करके खड़ा किया वसुंधरा के ऊपर, और खड़े करके कहा लाला ले लो तुम्हें जो कुछ चाहिए, मालिन का और कुछ नहीं रहा, तूने मालिन को ही चुरा लिया, ले लो। तो महाराज इसके बदले में यहाँ पे सुखदेव जी कहते फले पुरेयत रक्त नहीं है, इसे पूर्व क्या कहते हैं, कहते हैं इसे बात के सर्ग में कहते फलभंडम अपुरी चा। मालिन की जो टोकरी थी भगवान ने उसमें दो तीन कण धान डाल दिए तो वो रत्न में रक्त नहीं है, फलभंडम अपुरी चा। दिव्य रत्नों से अमूल्य हीरे जवारों से नीलम से भर गया फल वाली की टोकरी। मालिन ने बड़ा श्रद्धा के साथ बदली में बहुत सारे फलेर पुरेयद, सुखदेव जी कहते उनके दोनों हाथों में बहुत से फल ठाकुर जी ने भर दिया, मालिन ने भर दी बहुत से फल भर दी गोपाल जी के हस्त कमलों में। ठाकुर जी उसे पकड़ करके नंद महल की ओर जाने लगे, मालिन का तो इच्छा पूरा हो गया महाराज।
महाराज
यह जो बाल कृष्णलाल की जो यहाँ पे जो लीलाओं का वर्णन हो रहा है यह लीला बड़ा विचित्र है। इसके पीछे बहुत बड़ा तात्पर्य है। परमाराध्य वंदनीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज बड़ा सुंदर तात्पर्य में भाव दे रहे हैं। अब आप तात्पर्य की ओर ध्यान दीजिए। तात्पर्य में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रभुपाद ने तात्पर्य में दो बड़े सुंदर सुंदर श्लोक भगवद गीता के रखे हैं। एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपहृतम अस्मामि प्रयतात्मनः। एक यह श्लोक है, एक और भी श्लोक रखे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वीषि कुन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यह दोनों श्लोक में हरेक भक्त का जीवन इस दोनों श्लोक के अंदर है। हमारी जीवन यह दोनों श्लोक के अंतर्गत है। कोई अगर वास्तव में भगवान से प्रीत करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, प्रिया प्रियतम का दर्शन करना चाहता है, उसे इस दोनों श्लोकों का अनुगमन अवश्य करना चाहिए। भाव क्या दे रहे हैं आचार्य पाद? भाव यह दे रहे हैं, कहते कि मालिनी ने मालिनी के टोकरी रत्न से क्यों भर गया, कैसे भर गई? क्योंकि उन्होंने कन्हैया को उस धान के बदले में बहुत से फल दे दिए। महाराज दो तीन धान का फल यह होता है कि पूरे उनके शरीर पे इतने सारे फल लद दो कि बाल कृष्ण लाल लेके भी चल न पाए। कई अनार, कई कलिंगर, कई कले चिकू, इतने थर भर दिए बाल कृष्ण लाल के हाथ पर। ये दो तीन धान का फल यह होता है। कौन करुणामय है, कौन ऐसा डायमंड व्यापारी जा रहा है बताना जिस डायमंड की कीमत 8-10 हजार हो और 1000 रुपया दिया जाओ, ले लो 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 जाओ। नहीं महाराज, परंतु यह केवल एक मात्रा उस करुणामय के अंदर हो सकता है। इसीलिए तो उनको दीनानाथ कहा गया है, दिन बंधु कहा गया है, भक्त वत्सल कहा गया है। महाराज ठाकुर जी जब किसी को देना चाहे, कहना क्या भाव स्मरण होते आ रहा है। भगवान जिसको देना चाहे कौन रख सकता है, भगवान जिसको मारना चाहे कौन उसे रख सकता है, भगवान जिसको रखना चाहे कौन उसे मार सकता है। हमारे प्रभु जब देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं। हम आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। राजस्थान के मिराज के आसपास के, उनके गांव के आसपास के करुणामय भक्तों के प्रति कितना कृपालु है, कितना दयालु है। वास्तव में उनके नाम भक्तवत्सल इसलिए हैं। ऐसा ना समझिए कि इनका नाम भक्तवत्सल है और भक्तों के ऊपर कोई कृपा नहीं होती। महाराज भगवान ने यह प्रतिज्ञा ले रखा है, बस तुम मेरा भजन तो करो। ठाकुर जी ने क्या कहा, बस पूरी तरह से मेरे सरेंडर हो जाओ, मेरे भजन करो, देखो हम तुम्हारे देखभाल करते कि नहीं है। भगवान ने यह नहीं कहा देखभाल करते कि नहीं करके देखो करके। भगवान ने प्रतिज्ञा शब्द उपयोग किया है, कहा कि मैं संकल्प के साथ कहता हूं अर्जुन, अनन्य चिंतयंतो माम ये जनाह परि उपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगा क्षेम वहाम्यहम। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, मेरा सुमिरन करता है, मेरा वंदन करता है, मेरा पूजन करता है, मेरे विषय में श्रवण करता है, मेरे संतों की सेवा करता है, गोमाता की सेवा करता है, तीर्थाटन करता है, गिरिराज की परिक्रमा लगाता है, ब्रज मायापुर जगन्नाथपुरी यात्रा करता है, इस प्रकार आध्यात्मिकता में जिन्होंने अपने जीवन को संलग्न रख रखा है, तब भगवान कहते हैं मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं भगत राज, योग क्षेम उसके जीवन में जो वस्तु की आवश्यकता होती है वह मैं उसे समय समय पर प्रदान कर दूंगा, और जो उसके जीवन में है उसके पास उसका भी रखवाली करूंगा। और क्या चाहिए हम आपको, और एक भक्त को क्या चाहिए? या भक्त के बाद छोड़ दो महाराज, इस दुनिया में एक विषय को क्या चाहिए? एक भोगी को, एक कामी को, एक लोभी को चाहिए क्या? यही तो चाहिए। और आए अस्ति अस्ति, और आए जो कंस चाहता था, दोनों पत्नी थे महाराज, अस्ति और प्राप्ति, जराछंद ने दोनों पुत्री को ब्याह दिया था कंस के साथ। और आए और महाराज अभी भय रहता है आने के बाद में चले न जाए। तो हमारे गोविंद कहते हैं जो हमारे शरणागत हो जाता है, जो हमें अपना जीवन का सार मान लिया है, जिसका विषयास्पद मैं बन चुका हूँ, कृष्ण बन चुका हूँ, कहते हैं उसके हृदय ने उसको जो भी कुछ जीवन में आवश्यकता होता है वह वस्तु मैं उसे प्रदान करता हूँ, जो कुछ है उसके पास उसका रखवाली भी करता हूँ। दोनों चीज भगवान ने कहा। गागरों नरेश की पाप्रता पराय की कथा सुनिए, जिनको भगवान ने करुणामय ने कितना भरपूर दिया। जो भक्त विरक्त होते हैं उन्हें भगवान बहुत कुछ प्रदान कर देते। महाराज भक्तों को आसक्ति नहीं होनी चाहिए धन के प्रति, स्त्री के प्रति, समाज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति निरासक्त रहना चाहिए। देखिए यह आप न समझिए कि छोटा सा ये हम आप लोगों को उपदेश दे रहे हैं, नहीं, दास आपको उपदेश नहीं दे रहा है, हम तो अपने लिए ही कह रहे हैं। हम ये बात अपने लिए ही स्वयं के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं। परंतु आप लोग जब सुन रहे हैं इसका भाव को ग्रहण कीजिए। भगवान उस जीव से अत्यधिक प्रेम करते हैं जो संसार से जिसका चित्तवृत्ति विरक्ति है, भगवान उसको प्राप्त होते। समय अभाव है, नहीं तो हमको कई कथा सुना देता है इस प्रसंग पर लेकर के। गागरों नरेश एक कथा तो अवश्य सुनिए कि किस प्रकार भगवान भक्त के जीवन में जो कुछ आवश्यकता होता है वो भर देते हैं। परंतु भक्त तो कैसा भक्त, केवल वेशधारी भक्त नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान से लीजिए, टोकाटाकी नहीं करते, दास का यह स्वरूप नहीं है, स्वभाव हमारा नहीं है कि हम किसी को टोकाटाकी करिए शासन में बैठ के, नहीं भाई, हमारे यह कर्तव्य नहीं है। परंतु सैद्धांतिक बातें हैं, जब हम कथा सुनते हैं कि सिद्धांत का भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्या कहते हैं, भक्त स्वरूप में प्रेम तो होना अति आवश्यक है, परंतु वह भक्त का जीवन में कोई लाभ नहीं है, भले विरक्ति का रूप क्यों ना हो, ब्रह्मचारी क्यों ना, सन्यासी क्यों ना हो, या गृहस्थी क्यों ना हो, यदि वो उसका बेस केवल विरक्ति का है, माथे पर तिलक है, गले पर कंठीमाला है, शरीर में वस्त्र है, लाभ नहीं होगा कुछ। बेस केवल विरक्ति का है, हृदय में यदि विरक्ति नहीं है तो कुछ फायदा होने वाला यह हम नहीं कहते कुछ नहीं फायदा होगा, होगा फायदा, फायदा तो होगा। क्या फायदा होगा, यह फायदा होगा कि उसे दुनिया संत समझ करके प्रणाम करेंगे, प्रभु जी हरे कृष्ण, दुनिया उन्हें संत समझ करके अवश्य प्रणाम कर देगा, दुनिया उन्हें संत समझ करके अपने घर पर ही बुला लेगा, प्रसाद भी पवा देगा, यहां तक कि क्या कहा जाए दान दक्षिणा भी दिवा देंगे। परंतु परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं ईमानदारी से स्वीकार कर ले वह व्यक्ति, वह भगत जिसके अंतकरण में चित्त में वैराग्य नहीं है, केवल वेद वैराग्य का बना करके घूम रहा है, उसका यह नहीं कहते कोई फायदा नहीं है, इतना ही फायदा होगा, लोग उसे अवश्य सम्मान करेंगे, दान दक्षिणा मिलेगा, वस्त्र इत्यादि मिलेगा, भोजन प्राप्त होगा, सम्मान भी प्राप्त होगा। परंतु ईमानदारी से यह स्वीकार कर लीजिए आत्म कल्याण प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार तो तब होगा जब हृदय में वैराग्य आ जाए, बेस में वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। पुंडरीक विद्यानिधि, बेस में कोई वैराग्य नहीं था महाप्रभु के भगत, परंतु हृदय में उनका वैराग्य था। हमारे राधा रानी स्वरूप गदाधर पंडित ने जब देखा मुकुंद जी के साथ में जाकर के पुंडरीक विद्यानिधि को, इतने सुंदर रत्न के महलों पर रह रहे हैं, हाथी दांत की बनी हुई पलंग पर लेटे हुए हैं, महाराज ऋषि का वस्त्र पहने हुए हैं, गले पर एक से एक सोने जवारे का माला पहने हुए हैं, जिस पात्र में वो थूक रहे हैं वो पात्र भी सुवर्ण का है महाराज, और कह रहे हैं ना क्या ये बहुत बड़ा भगत है। परंतु गदाधर पंडित के मन में जब यह भाव जगा तो मुकुंद जी ने उनके भाव को समझ गए कि इनके हृदय में इनके प्रति अपराध की भावना जग उठी है, ये तो अपराध है। महाराज ये भले बेस से वैराग्य नहीं है परंतु हृदय से वैराग्य है इनका, इनका चित्तवृत्ति इन सब चीजों में नहीं है। तो ठाकुर जी उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हैं जिसका हृदय में वैराग्य हो। गागरोन नरेश कृपा प्रताप राय वो सम्राट थे, गागरोन के राजा थे, महाराज रामानंदाचार्य के शिष्य थे, भगवान राजा राम सरकार के शिष्य थे, रामानंदाचार्य के रूप में जब इनका प्राकट्य हुआ, द्वादश शिष्य में से ये भी थे। तो जब इन्होंने अपने राज्यवाटी, बड़े संक्षेप में हम आपको सुना रहा हूं, राज्यवाटी त्याग करके जब ये साधु बन गए, जोगिया बाबा बन गए, वैराग्य बन गए, साथ में इनकी पत्नी सीता सहतरी भी भक्ति नहीं बन गई। और उनके गुरु महाराज ने कहा, कहा कि तुम अपने पत्नी के साथ सन्यासी बन करके घूमो। बहुत पूर्व की बातें हैं। अब कृपा प्रताप राय ने कहा, महाराज हम तो घर छोड़ रहे हैं, अब यदि यही पूंछ साथ पर चलने वाली थी तो फिर घर काहे को छोड़ना है, फायदा क्या है? यदि पुछिया को ले जाना है तो घर काहे को छोड़नी है? कोई गृहस्थ ऐसा कहना दे भाई अपनी पत्नी से पुछिया पुछिया, फिर तो पूछी काट देंगे, दूसरे दिन रोटी भी नहीं मिलेगा। पुछिया कह रहे थे हम, तुम्हारी जिंदगी है हम कहेंगे। कृपा प्रताप राय ने जैसे ग्रह त्याग किया, साथ में उनकी देवी जी सीता सहचरी का भी दोनों ही बाबा माता बन गए। और ये इतना संत सेवा करते थे, संत सेवा इतना करते थे, क्या कहना इनके विषय में। एक प्रताप राय सवेरे सवेरे जब नहाने गए, एक दिन की बात ऐसा है कि कुटिया में रहते थे, राज्य समग्र त्याग करके चले गए। और जब ये एक कुटिया में रहते थे, सवेरे स्नान करने के लिए गए, तो स्नान करने का विधान क्या है? नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बताया गया है। स्नान करने का विधान क्या है? हम लोग नित्य स्नान करते हैं ना बाथरूम में, अटैच बाथरूम में। परंतु स्नान करने का विधान यह है, कहते हैं स्नान के उपरांत यदि आपने मिट्टी का स्पर्श नहीं किया तो आप शुद्धिकरण नहीं माने जाएंगे, आप भगवत पूजा के लायक नहीं हो। तब तक जब तक हम मिट्टी का स्पर्श नहीं करते, मिट्टी से पवित्रता होती है, व्यक्ति का पवित्रता शुरुआत होती है मिट्टी के स्पर्श करने से। पिता प्रताप राय सवेरे नहाने गए, महाराज विधि क्या है मिट्टी लगाने का शरीर में? कहते हैं कम से कम घुटने तक खुदाई करना चाहिए, सवेरे सवेरे यह नित्य कर्म होता है हर एक व्यक्ति का। घुटने तक खुदाई करें और उसमें से मिट्टी लें, कितना मिट्टी लें? जितना आंवला होता है, आंवला पके हुए आंवला होता है, उस पके हुए आंवला जितना उतना 10 बार मिट्टी लें और अपने दाएं हाथ में लगाए, फिर 7 बार और मिट्टी ले बाएं हाथ में लेपन करे, फिर 5 बार मिट्टी और ले दोनों हाथों में लेपन करे, 18 बार और मिट्टी ले दोनों चरणों में लेप करे। महाराज एक तो गृहस्थों के लिए, विरक्तों के लिए तो इनसे बढ़कर के और है मिट्टी लगाने की विधान। महाराज जब तक मिट्टी का स्पर्श नहीं करते तब तक पूजा के योग्य नहीं बन सकता व्यक्ति, पवित्र नहीं होता वसुंधरा के स्पर्श के बिना। परंतु आज अगर कोई भी वस्तु, गृह प्रवेश हो, जन्मोजात संस्कार हो, कोई भी कार्य में मिट्टी का स्पर्श अवश्य होता है। आज अगर कोई महात्मा जाए, मान लो कुमदास प्रभु किसके घर पर जाए गृह प्रवेश का पूजा करने, और महाराज मिट्टी मंगा करके पूरी सफेद व्हाइट वाश कर रखा सब जगह, मिट्टी का मिट्टी लेप कर दे, वो कहेंगे आया बड़ा बाबा, महाराज पूरी सबरे कमरे में मिट्टी लगा करके चला गया। अगर ऐसे कोई पंडित आ जाए किसके घर का शुद्धि कर दे मिट्टी लगा करके, कहे बड़ा बाबा आया अब तो कल्याण कर गया, अब दोबारा व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, कहां तक आ जाए महाराज। आज तो ये संस्कृति ही चली गई, आज तो यहाँ तक स्कूल कॉलेज में यह भी पढ़ाया, दास ने भी यह पढ़ा था स्कूल में, स्कूल कॉलेज में यह पढ़ाया जाता है, कहते हैं मिट्टी का स्पर्श करना अपवित्र, कहते हाथ धोना है तो साबुन से धोना है, नहाना है तो साबुन से नहाना, यह बताई जाती है स्कूल में। कितनी बुद्धि मारी गई है कलिकाल में लोगों का। व्यास जी ने ठीक लिखा है, मंद भाग मंद सुमंद मतयो, कलिकाल में सबकी बुद्धि बहुत मंद हो जाएंगी। तो कृपा प्रताप राय मिट्टी इस प्रकार शरीर में लेप कर रहे थे, और लेप करने ही जा रहे थे तब तक उन्होंने क्या देखा, एक सुवर्ण का कलश, एक नहीं कई सोने का घड़ा मिला सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए कथा लंबा हो जाएगा इसलिए हम संक्षेप में जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना अत्यंत आवश्यक है, कोई भी माताएं, कोई भी भगत, कोई भी गृहस्थ ब्रह्मचारी क्यों ना हो। मुझे महाराज जी जब पढ़ाते थे तो यही कहते थे हमसे, कहा कि बेटा हमें श्लोक भी उन्होंने दिखाया, दास को श्लोक कंठस्थ नहीं है, नहीं तो सुना देता अवश्य। कहते कितना भी आप साधन करो, कितना भी भजन जप तप करो, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं तो आपकी भक्ति निरर्थक चली जाएगी। पुण्य सब क्षीण हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में न जगने पर। महाराज आप कुछ करो या न करो, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना ही भक्ति है, यहां तक कहा गया है पुराण में, और क्या कहा जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही भक्ति है। बताओ विवाह प्रताप राय ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के लिए चले गए, सुवर्ण का कलश देखा, उन्होंने महाराज बड़ा दुखी हुए, खोले ढक्कन तो देखे उसके अंदर सोने की सर्पिया थी। महाराज पटक करके चले आए, बड़ा उदास हो गए कि सवेरे सवेरे माया का दर्शन हुआ। आपकी हमारी स्थिति होती तुम अपनी तो नहीं गति महाराज, दुनिया में किसी और का स्थिति होता वो महाराज बड़ा आनंद सवेरे सवेरे प्राप्त हो गया। किसी को जब सवेरे 150 प्राप्त हो जाता है तो वो क्या सोचता है, आज तो महाराज दिन पूरा मंगलमय जाएगा, सवेरे हमें प्राप्त हो गया। नहीं महाराज, विरक्ति को लिए, विरक्ति पुरुषों के लिए सवेरे ऐसे वस्तु प्राप्त हो जाना, धन धान्य प्राप्त हो जाना अनर्थ ही है। विवाह प्रताप राय ने उस सोने का कलश को पटक करके चले आए, स्नान भी नहीं किए। वहां पत्नी से आके कहे, पत्नी भी ऐसी थी महाराज परम विरक्तिनी, वह सीता सहसरी ने कहा कि हाँ ठीक है, बड़ा अपशकुन की बातें हैं, सवेरे सवेरे स्वर्ण का कलश प्राप्त हुआ, परंतु आप कल से वहां मत जाइएगा नहाने। पत्नी भी ये कह दी, जय हो, कल से आप उधर मत जाइएगा, उस तरफ मत जाइएगा, कहीं और जाइए स्नान करने। अरे महाराज ऐसे बात कर रहे थे, सायं की घड़ी थी, जब दोनों बाबा माता बात कर रहे थे, विवाह प्रताप राय और सीता सहसरी, सत्य घटना है, मनोकाल्पनिक कथा नहीं है, आज भी आप जाएंगे गागरम नरेश का स्थान भी है जहां पे घटना घटी थी। तो इस प्रकार दोनों बातें कर रहे थे, उनकी कुटिया के पीछे चार चोर बैठ करके इन सब बातों को सुन रहे थे। चोरों ने सोचा, ये कहा, ये बड़ा मूर्ख बाबा है, इसको सोने का कलश प्राप्त हो गया और पटक के चला गया, तो बड़ा मूर्ख निकला। हम तो समझता था कि विवाह प्रताप राय बड़ा विद्वान है, तो मूर्ख निकला महाराज। दूसरा तोड़ने का, नहीं नहीं संतों को ऐसा ही होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए, अगर ये नहीं पटके होते ले आते तो हमको कहां से प्राप्त होता। तीसरा ने कहा चलो 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 देखते अब है कि नहीं। महाराज गए, जैसे बात उन्होंने सुना था कुटिया के बाहर चोरों ने, वैसे ही उनको दर्शन प्राप्त हुआ, मिट्टी गाढ़ा हुआ था, वहां पे सोना का कलश भी उन्हें दिखाई पड़ा। बड़ा चोरों ने प्रसन्न हुए, महाराज कृपा प्रताप राय ने सत्य कहा है, यहाँ तो स्वर्ण का सुवर्ण का कलश दिखाई पड़ रहा है। और उस कलश को उन्होंने उठाया, जैसे ही चोरों ने खोला महाराज, उसमें से सोने का सर्पिया नहीं दिखाई दी, नाग नागनिया महाराज फुफकार मारते हुए निकले। संत के लिए तो स्वर्ण का सर्पिया था, अब इनके लिए, चोरों के लिए नागनागिनी बन गए। फुफकार मारते हुए निकले महाराज, वो तो ढकनी जैसे तैसे बंद किए, बड़ा नाराज हुए। चोरों ने कहा कि अरे वो दुष्ट कृपा प्रताप ने, लगता है उसको पता चल गया कि हम उसके कुटिया के बाहर बैठे हैं, हमको मारने के लिए इस प्रकार का बातें वो कर रहे थे। इसमें सोने का सर्पिया ने, सांप देखा नहीं तुम लोगों ने, तो क्यों नहीं ऐसा ये मटकी उसके घर पर फेंक गया है, उसी को मरवा दें। उनके भाव में यह भावना जग उठा कि कृपा प्रताप राय को हम कत्ल कर दें। उन्होंने क्या किया, चोरों ने रात्रि के समय उस मटकी को लिया, स्वर्ण का कलश को लिया और जा करके, और दोनों बाबा माता तो सोए नहीं थे, सवेरे से बहुत दुखी थे, सोने का सर्पिया का स्पर्श करके बहुत दुखी थे, उदास थे, माता जी को बाबा जी को नींद ही नहीं आ रही थी महाराज, बड़े उदास से बात कर रहे थे, थोड़ी सी आंखें लगी। और उस समय उन चोरों ने क्या किया, छोटा सा झोपड़ी थी उनकी, झोपड़ी के ऊपर चढ़ करके, दरवाजे तो बंद थी, छत को उखाड़े, चाल को हटाए और हटा करके, झोपड़ी हटा करके ऊपर से सोने का कलश उसके घर के अंदर डाल दिए महाराज। वो महाराज जैसे सुवर्ण का कलश उसके घर पर गिरा, कि बाप प्रताप राय महाराज कलश तो फट गया और सोने की सर्पिया छन छन होकर के बिखर गया। सत्य घटना है, स्वर्ण का सर्पिया छन छन होकर के, 350 स्वर्ण का सर्पिया, प्रियादास जी वर्णन करते, 350 सोने की सर्पिया थी और एक स्वर्ण का सर्पिया कम से कम 5 तोले की थे, एक स्वर्ण की सर्पिया। आप लोग व्यापारी हैं, बिजनेस व्यापार करते, दांत को इतना अनुभव नहीं है, तो आप लोग विचार कर सकते 5 तोला कितना होता है। इस प्रकार 350 सोने की सर्पियां उसमें से प्राप्त हुआ। पिपा प्रताप राय ने उठे, लाइट तो नहीं थी कि लाइट जला दे, दीपक जलाए, दीपक की समय था, दीपक जलाए तो उन्होंने देखा कि महाराज वही कलश जो हमने वहां सवेरे त्याग आया था। बड़ा नाराज हुए, बहुत दुखी हुए, नेत्र भराया, रोने लगे कि पता नहीं भगवान माया का स्पर्श क्यों करवा रहे हैं। पत्नी सीता सातरी कहने लगी, नहीं नहीं आप दुखी मत होइए, लगता है राजा राम सरकार के कोई विशेष अनुग्रह है, गिरधारी के कोई विशेष इच्छा है, वह धन आपको ही देना चाहते, कोई सेवा करवाना चाहते हैं। इसीलिए देखिए, कहते हैं ना, भगवान जब देते छप्पर फाड़ के देते हैं, और आज हमारे छप्पर ही फाड़ करके ठाकुर जी ने घेर दिया। उनके छप्पर ही तो फाड़ के गिरे थे। रानी जी ने स्मरण दिलाया, प्रभु देखिए छप्पर फाड़ के प्रभु ने यहाँ गिरा है, इसीलिए आप इसका निरादर मत कीजिए। पिया प्रताप राय ने गिना उस सोने की सर्पिया को, 350 सोने की सर्पिया हुआ। सवेरे सवेरे हलवाई को निमंत्रण दे दिया, महाराज कढ़ाई के करती कढ़ाई बजने लगा, खूब बढ़िया सा लंगर चलने लगा, संत का जमात, टोली का टोली महाराज संत आने लगे, खूब बढ़िया से खाए पिए और दान दक्षिणा लेकर के सबकी विदाई हुई। कथा तो और बड़ी है इसकी, परंतु भाव हमारा यह था बताने का, भगवान के शरणागत्य जब जीव स्वीकार करता है, जब हमारे अंतःकरण में वैराग्य आ जाता है, तो प्रभु स्वतः उसके हृदय में जो भी कामनाएं होती है, जो भी उसके जीवन में आवश्यकता होता है, भगवान जांच करके दे जाते हैं। तो आज मालिनी के यहाँ पर इस प्रसंग में यह शिक्षा प्राप्त होता है, मालिनी ने बड़ा श्रद्धा के सहकार से भगवान के दोनों हस्त कमलों में बहुत से फलों को भर दिया मालिनी ने, और प्रभु ने बदली में उनसे प्रसन्न हो गए। मालिनी ने बड़ा श्रद्धा के सहकार से दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय में 26 नंबर श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो मुझे एक तुलसी का पत्ता दे देता है, दल समर्पण करता है, और एक पुष्प प्रदान करता है, या एक फल मुझे समर्पण करता है, या लोटिया भर जल हमें प्रदान कर देता है, तो हमारे बालकृष्ण लाल क्या कहते हैं, कहते हैं भगतराज मैं उसे स्वीकार करता हूँ, सहसा स्वीकार करता हूँ, बदले में क्या देता हूँ। विष्णु पुराण की भाव सुनिए, बदले में भगवान क्या देते हैं, विक्रीणीते स्वम आत्मा नाम भक्तभ्यो भक्तवत्सल तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलके नवा। पुराण में यह बात वर्णन है, व्यास जी कहते हैं, कहते जो व्यक्ति बड़ा श्रद्धा के साथ प्रेम के सहकार से चुल्लू भर जल और एक तुलसी के मंजरी प्रभु के चरणों में समर्पण करके कहता प्रभु दास का यह भेंट स्वीकार कीजिए, तब भगवान कहते हैं मैं उसे बदली में इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं उसे विक्रणित स्वम आत्मानं भक्तभ्यो भक्तवत्सल भगतराज मैं उसे बहुत कुछ प्रदान करता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, मैं स्वयं अपने आप को उस भगतराज के पास बेच देता हूँ जो एक तुलसी के पत्ता मुझे समर्पण। अपने आप को भगवान सोचते हैं, बेचने के उपरांत भी भगवान सोचते हैं, कन्हैया सोचते हैं, अभी भी इसका ऋण हमने चुकाना बाकी है। हमारे सुदामा जी ने, भगतराज ने जब द्वारकापुरी में पधारे और ठाकुर जी को जब चिवड़ा दिए, 3 मुठ्ठी चिवड़ा लेकर के गए थे, भगवान ने उसको सेवन किया और बदले में अपने राज महल जैसा अयोध्यापुरी में हमारे ठाकुर जी के जैसा महल था, सुदामा को ऐसा महल प्रदान कर दिए, और स्वयं स्वर्ग के जितना वैभव सुख स्वयं लक्ष्मी का पदार्पण हो गया सुदाम जी के घर पर। तभी भी बालकृष्ण लाल को, हमारे द्वारकाधीश जी को यह स्मरण हो रहा था कि अभी भी हम सुदामा को कुछ दिया नहीं है। महाराज आप फिल्मी में भले ऐसे देख रहे होंगे कि सुदामा से भगवान ने पूछा भगत कुछ चाहिए, परंतु वास्तव में भागवत का जब हम अध्ययन करते, स्वाध्याय करते, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर व्यास जी क्या वर्णन करते, विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान ने ऐसा कोई भाव नहीं व्यक्त किया सुदामा के समक्ष भगतराज कुछ चाहिए क्या, जबकि भगवान ने इतना कुछ दे चुके थे, परंतु भगवान ने यह बात व्यक्त भी नहीं किया। ये तो भगवान का उदारता थी। करुणामय कोई यदि कोई एक तुलसी के पत्ता समर्पण करता है, एक मिश्री भी प्रदान कर देता है, भगवान बदले में ऋणी हो जाते उसके। महाराज आचार्य लोग टीका में करते हैं, कहते हैं कहते भगवान ने इतना वैभव दिया सुदामा को, कम से कम यह संकेत तो प्रदान कर दिया होता, सुदामा तुम्हें हमने इतना दिया अब और कुछ चाहिए क्या? परंतु हमारे गोविंद ने यह भी नहीं स्मरण करवाया कि सुदामा हमने तुमको कुछ दिया। सुदामा को ऐसा लग रहा था हमको कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सुदामा प्रसन्न नहीं थे, बड़ा प्रसन्न थे। सुदामा का तो भाव यह था हमें जो चाहिए था वह तो प्राप्त हो गया, मगर मेरे पत्नी के लिए जो चाहिए था वह नहीं प्राप्त हुआ, यह सोच रहे थे। परंतु भगवान करुणामय इतना सब कुछ दे चुके थे, करुणामय ने यह संकेत भी नहीं किया सुदामा तुम्हें हमने ये दिया। चक्रोत्पाद अपने टीका में वर्णन करते भाव देते हैं, कहते हैं भगवान शर्मिंदा हो रहे थे, कह रहे थे सुदामा ने अपना पूरी शक्ति लगा करके तीन मुट्ठी चिवड़ा हमारे लिए ले आया, और मैं कृष्ण त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति त्रिभुवन के स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक राज अधिराज वृंदावन बिहारी द्वारकाधीश मैं हूं, त्रिभुवन मेरी मुट्ठी में है, अखिल ब्रह्मांड के नायक स्वामी रमाकांत लक्ष्मीपति मैं हूं, मैंने उनको क्या दिया बदले में? सुदामा ने अपना पूरी शक्ति लगा करके तीन मुट्ठी चिवड़ा प्रदान किया, और मैंने तो इनको पूरा शक्ति लगा करके देना चाहिए था, परंतु मैंने पूरा शक्ति नहीं लगाया, थोड़ी सी कृपा दृष्टि किया इसके ऊपर, इसलिए भगवान सोच रहे थे मैं इन्हें कुछ दिया ही नहीं हूं, इसलिए अगर इन्हें कुछ कहूं तो ये शर्मिंदा की बात होगी। ये हमारे ठाकुर जी के भाव थे, परंतु यह भाव भगवान के हृदय में कब जगता है? कब? यह श्लोक में सातवें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में श्री प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में रख रहे हैं। नीचे के सर्ग में कहते हैं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जब जीव हमें भक्ति के सहकार से समर्पण करता है तब भगवान कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं। आप लोगों ने महाभारत अध्ययन किया होगा, श्रवण भी किए होंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है, हमारे ठाकुर जी जब हस्तिनापुर दिल्ली में आए हुए थे शांतिदूत बन करके, तो उस समय दुर्योधन ने उन्हें निमंत्रण दिया, प्रभु चलिए आपके लिए नैवेद्य तैयार है। भगवान ने दुर्योधन के आतिथ्य को ठुकरा करके विदुर के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। विदुर जी राजसभा से निकाल दिए गए थे, दासी पुत्र थे। भगवान ने उस भरी दरबार में कहा दुर्योधन से, दुर्योधन उनका समुदी लगते थे, परंतु भगवान ने उनके आतिथ्य को ठुकरा दिया। ये कहते हुए बोले कि दुर्योधन भोजन तो दो जगह पर किया जाता है, दो परिस्थिति में किया जाता है, क्या है? प्रथम परिस्थिति यह है या तो देने वाले के हृदय में श्रद्धा हो कि हम संतों को सेवा करेंगे, खवाएंगे, जिमाएंगे महाराज, वहां भोजन करनी चाहिए, या तो फिर खाने वाला भूखा हो, और ये दोनों चीज यहां तुम्हारे मेरे बीच में नहीं है, ना तुम हमें श्रद्धा के सहकार से बुला रहे हो, तुम तो यह सोच के बुला रहे हो कि ये ग्वाला है जीवन भर मक्खन मिश्री खाया चुरा चुरा करके, कहां छप्पन भोग खाया राज दरबार में, और तुम्हें उसको छप्पन भोग खवाऊंगा महाराज। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। दूसरी बात रही भूखे की बात, मैं कोई भुक्कड़ तो है ही नहीं महाराज, मैं तो भुक्कड़ है ही नहीं, मेरे पति तो स्वयं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सिद्ध्यमान, करोड़ लक्ष्मियां मेरे चरणों की दासी है महाराज, ऐसी मेरी पत्नी थोड़ी सी कृपा कर दे तो लाल लाल बन जाते महाराज, सेठ जी बन जाते, सेठ जी शब्द आ जाता है, मेरे पत्नी की बरदहस्त किसके मस्तक पर पदार्पण हो जाता है, तो मैं भुक्कड़ भी नहीं हूं, इसीलिए तुम्हारे यहां नहीं। उनके आतिथ्य को ठुकरा करके हमारे ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने भरी दरबार में कह दिया हमें तो चाचा जी के वहां से निमंत्रण आया है महाराज। विदुर जी के नेत्र भर आए, विदुर जी सोचने लगे हमने कब इनको निमंत्रण दिया, हमको तो पता ही नहीं था कि गोविंद का पदार्पण हो रहा है हस्तिनापुर में। विदुर जी उस सभा मंडली से बड़े प्यार से निकल गए और जाके द्वार द्वार भटकते हुए भिक्षा मांगने लगे, मके कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, हमें कुछ भिक्षा प्रदान कर दो, हमारे घर पर अब बिहारी जी आने वाले हैं, द्वारकाधीश आने वाले हैं, उन्हें जिमाने के लिए कुछ हमें प्रदान कर दो। और उसी बीच में हमारे ठाकुर जी ने विदुर के घर पर पहुंचते हैं, उस समय विदुरानी अकेली है घर पर, विदुरानी ने उन्हें दरवाजे खोल करके स्वागत किया और घर पर एक लकड़ी का पट्टा प्रदान किया, बोले प्रभु गरीब के कुटिया पर पदार्पण कीजिए। भगवान ने उस लकड़ी के पट्टे के ऊपर ऐसे बैठ गए मानो हम अपने अयोध्यापुरी में, अपने द्वारकापुरी में रत्न सिंहासन पर बैठा हूं। महाराज प्रेम से दी हुई भेंट को भगवान स्वीकार करते, यो में भक्त्या प्रयच्छति, बैठ गए और ठाकुर जी कहने लगे, चाची हमें भूख लग रही हो, कुछ खाने के लिए दे दो। अब जब ऐसे कहने लगे, चाची कहने लगी, गोविंद चाचा जी गए हुए हैं तुम्हारे कुछ लाने के लिए, थोड़े देर इंतजार करो। बोले कि नहीं नहीं मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ दे दो। चाची ने कही, विदुरानी ने कही, गोविंद अब क्या करूं, ये कहते हुए शर्म आ रही है, हमारे घर पर कुछ नहीं आपको खवाने के लिए, जिमाने के लिए, देने के लिए, अब कुछ नहीं है। हमारे घर पर और कुछ नहीं है, यह उन्होंने कहा। तब ठाकुर जी ने कहा कि चाची जी भले आपको नहीं पता है आपके घर में क्या है, परंतु मुझे पता है सबके घर में क्या है। कभी कभार लोग छिपाते हैं, भक्त जाते मांगने के लिए, मंदिर बन रहा है कुछ दे दो, कहते प्रभु जी इस समय तो बिजनेस व्यापार बहुत लूज चल रही है, इतनी नुकसान हो गया, ये हो गया, वो महाराज अपना करोड़ों का प्रॉफिट खूब समेट करके बैंक में ताला लगा रखा है, तिजोरी में बंद कर रखा है, नहीं नहीं है ये, नहीं वो नहीं, ठीक है। मगर भगवान को पता है, तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद ने लिखा, हम अपने मन की बात नहीं कर रहे, हर एक गृहस्थ को कुछ कुछ मंदिर में प्रदान करना चाहिए, और आपकी गिरधारी की मंदिर बन रहा है, आप ही लोगों का ही है, हम सभी का ही है, बड़े श्रद्धा के साथ है, इसमें दान करना चाहिए। महाराज कितने दिन की जीवन है, क्या लेके जाएंगे यहाँ से, यही अगर लगा देंगे तो भगवान ये जरूर याद रखेंगे। आपकी दी हुई पुण्य से एक पत्थर यदि लग गया ठाकुर जी के दरबार पर, एक पुष्प यदि चढ़ गया, महाराज उसी को देख करके लोगों के हृदय में जो आनंद आएगा, यह पुण्य के फल स्वरूप, भक्ति के स्वरूप उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसने दक्षिणा दिया है, जिसने सेवा किया है। विदुरानी ने कहा कुछ नहीं है, ठाकुर जी ने कहा कि चाची जी मुझे पता है, देख लो केला है। विदुरानी ने दौड़ करके गए, वो केले हैं घर पर, केले खाएंगे गोविंद? उसने कहा कि हाँ महाराज केले तो एकादशी में खाते हैं, अब अगर तुम एकादशी कराना चाहते तो कोई बात नहीं, एकादशी कर लेंगे, लाओ फलाहार। विदुरानी भगवान के मुखारविंद का निहार रही थी, भगवान इतने सौंदर्य है, जैसे यहाँ पर मालिनी भगवान के मुखारविंद, बालकृष्ण लाल के मुखारविंद को निहार रही थी, विदुरानी ऐसे भगवान के मुखारविंद छठा सभी का निहार रही थी। और उस समय केले को नीचे गिरती जा रही थी, केले का छिलका गोविंद के हाथ में दे रही थी, और हमारे करुणामय कृपा निधान भक्त वत्सल गोविंद ने उस केले के छिलके को प्रेम के स्वरूप ग्रहण कर रहे थे। अरे महाराज त्रिभुवनपति त्रिलोकीनाथ संपूर्ण ज्ञान के सिदाघन स्वरूप, क्या उन्हें पता नहीं था कि केले का छिलका मुझे प्रदान कर रही है बबरी? विदुर ने देखा, विदुर ने पूछा, अरे 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 क्या कर रहे हो, केले तो तू नीचे गिरती जा रही है, छिलका गोविंद के हाथ में, और प्रभु आपको क्या हो गया, आप तो कम से कम इसे संकेत कर देते। करुणा मैं ने कहा, भगतराज मैंने यह संकल्प लिया है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, मैं विदुरानी के भाव देख रही हूँ, ये मुझे भाव से खवा रही है, इसके हृदय में कष्ट नहीं होना चाहिए। करुणा मैं ने यह कहा, विदुरानी के नेत्र भराए, विदुर जी के नेत्र भराया। महाराज महाराज कहने का तात्पर्य यह है, इन बाल कृष्ण लाल की यह सुंदर जो लीला यहाँ पर वर्णन हो रहा है, यह लीला से यह पुष्टि हो रहा है, यह भाव व्यक्त हो रहा है कि हमें भगवान से कितनी प्रीत करनी चाहिए। महाराज मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी को लगता यह भाव स्मरण हो रहा है इस श्लोक में, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, नित्य जो कुछ करे वो भगवान के लिए करे, इसलिए सातवें अध्याय के और सुंदर श्लोक को तात्पर्य में प्रभुपाद ने रख दिए। यह भाव का स्मरण करते हुए आचार्य पाद के भाव का सम्मान तो कीजिए, प्रभुपाद जी क्या संकेत कर रहे हैं। भगवान ने कहा गीता में, वह बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते, हरेक भक्त को मालिनी के इस प्रसंग को सुनने को उपरांत भगवत गीता के यह श्लोक को हृदयंगम करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वेषि कुन्तेय तत्पुरुष्व मदर्पणम्। हम जो कुछ करते हैं केवल गिरधारी के लिए होना चाहिए, जो कुछ देते हैं वह भी भगवान के नाम होना चाहिए, जो कुछ खाते हैं प्रभु को समर्पण करके लेना चाहिए, प्रसादी के रूप में उसका सेवन करना चाहिए। यह तपस्वी सिकुंते, तपस्या करते हैं ना, कीजिए सबरी तपस्या, मगर जन्माष्टमी को अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग होते कहते प्रभु जी हमारी सोमवार व्रत चल रहा है, प्रभु जी नवरात्र चल रहा है, यो चल रहा, हम नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। देवी का व्रत, देवी आराध्या, देवी आराध्यवान है, भगवान की दासी है, उन करुणामयी की कृपा हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाए। परंतु जितना निष्ठा सोमवार मंगलवार शनिवार के व्रत में होता है, हनुमंत लाल के भक्ति व्रत तपस्या में होता है, उतना निष्ठा हमारी भगवान के जो व्रत होता है जैसे एकादशी व्रत इत्यादि इनमें भी होनी चाहिए। जन्माष्टमी, अश्विन चतुर्दशी, इन सब में होना चाहिए। खास करके एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यह तपस्वी सिकुंते है। तो मूल तात्पर्य यह है आज के इन श्लोकों में, इन लाओं के अंतर्गत मनुष्य जीवन का सार यह होता है, हम सभी का जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए, एकमात्र भगवान श्री हरि को ही रिझाना, भगवान को ही प्रसन्न करना, हमारे जीवन का मूल तात्पर्य यह है। यदि हमारे जीवन में हमारे विषयास्पद भगवान ही बन गए, विषयास्पद और कोई नहीं बनना चाहिए, बस व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष हमारे विषयास्पद नहीं होना चाहिए। विषय का विषयास्पद केवल गिरधारी हो जाए, हमारे हृदय में समस्त इंद्रियों के प्रमुख देव यदि भगवान हो जाए, गिरधारी हो जाए, जगन्नाथ बन जाए, तब तो कहना है क्या, जीवन सार्थक हो जाए हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही देवानी को विनाम करता हूँ। यदि हमसे कोई गलती हो गई होगी, कोई माताएं हैं प्रभु जी लोग, तो दास को आप लोग क्षमा करेंगे। छोटा सा भक्त हूँ, कोई इतना बड़ा श्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ। और उपदेश का रूप में जो भी आपको लगा होगा, उपदेश नहीं है, यह तो दास स्वयं के लिए कह रहा था। कथनचित हमारा स्वभाव नहीं किसी को ठेस पहुंचाना। यदि फिर भी दास से कोई गलती हो गई होगी, आप लोग छोटे से भगत समझ कर क्षमा कर देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।